नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे नष्ट प्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। तो श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंद सातवां अध्याय प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, श्लोक संख्या 2. ये जो अध्याय है भागवतम का, वैसे तो हर एक अध्याय महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं अपने साथियों को। सात सात अठारह, जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। जन्माद्या सरिषे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानाम इव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। जन्म से लेकर षट छह जन्म अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु, इमे ये सब भावाह शरीर की विभिन्न अवस्थाएं दृष्टाः देखे जाते हैं देहस्य शरीर के, न नहीं आत्मनः आत्मा के, फलानाम फलों के इव सदृश्य वृक्षस्य वृक्ष के, कालेन कालक्रम से, ईश्वरमूर्तिना जिसका स्वरूप रूपांतर करने या शारीरिक कार्यकलापों को वश में करने की क्षमता है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में छह प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। कृपया दोहराइए, जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा मूलों में कालक्रम में छह प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तात्पर्य, आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता 2:20 में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु, नहीं एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह अजन्मा शाश्वत सदा विद्यमान रहने वाला ना मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है, जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं। वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट है। वृक्ष अनेकानेक वर्षों तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फूलों तथा फलों में 6 परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रसायन विदों का मूर्खतापूर्ण सिद्धांत कि जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है, सच में ही सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भौतिक शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यही है कि कभी कभी मैथुन के बाद रस तथा वीर्य के मिलने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वह बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूलों तो ऋतियों के अनुसार आते जाते हैं, किंतु वृक्ष खड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं जिसमें 6 परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसा ही रहता है। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा के 2 प्रकार हैं, परमात्मा भगवान तथा जीवात्मा जीव। जिस तरह जीवात्मा में विविध शरीर शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में मध्वाचार्य कहते हैं, षड् विकारा शरीरस्य न विष्णोस्त गतस्य च तदधीनम शरीरम च ज्ञात्वा तन ममताम त्यजेत। चूंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्त शरीरिना, यह भगवद गीता का कथन है। भौतिक शरीर अंतवत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश हैं। शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर क्षुद्र चीटी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुणमय से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और आगे व्याख्या हुई है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया शक्षुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सबका धन्यवाद आज के भागवतम क्लास में आने के लिए। तो हम सातवें स्कंद से पढ़ रहे हैं नरसिंहदेव और प्रह्लाद महाराज की लीला। आप सबको पता है कि श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और पूरा दसम स्कंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। अभी जन्माष्टमी का उत्सव आने वाला है तो हमें कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ भागवतम के हर एक स्कंद में भगवान उनके भक्तों की लीला है, तो हर एक स्कंद महत्वपूर्ण है। और कृष्ण लीला के बाद कौन सा लीला है जिसपे सबसे अधिक अध्याय है श्रीमद् भागवतम में? नरसिंह भगवान की लीला जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो दसम स्कंद में तो भगवान कृष्ण की लीला है जिसमें सबसे ज्यादा अध्याय है, और लेकिन बाकी जितने भगवान के अवतार हैं उसके बारे में कुछ दो या तीन ऐसे अध्याय हैं। जैसे राम जी के बारे में 2 अध्याय नवम स्कंद में, वामन देव के बारे में 8वें अध्याय में है 2-3, 8वें स्कंद में 2-3 अध्याय, लेकिन 7वें स्कंद में आप देखेंगे पहले अध्याय से लेके लगभग 10 अध्याय, एग्जैक्टली 10 अध्याय तक, 10वां अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रह्लाद। तो 10 अध्याय पूरे कौन सी लीला के बारे में है? नरसिंहदेव और प्रह्लाद महाराज। तो एक तरह से पूरा 7वां स्कंद यही है, बस इसके बाद युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि वर्णाश्रम धन के बारे में चर्चा करेंगे आखिरी 5 अध्याय में। तो ये लीला इतनी महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, नरसिंहदेव और प्रह्लाद महाराज की कथा। अब पता है चैतन्य महाप्रभु हर दिन, उनका दैनिक स्केड्यूल क्या था, उनका डेली स्केड्यूल चैतन्य महाप्रभु का, प्रातःकाल उठ के जगन्नाथपुरी मंदिर में मंगला आरती के लिए जाते थे, फिर वहां पे भगवान के दर्शन करके जप करके वापस आते थे और हरदास ठाकुर से मिलते थे। क्या आप जानते नामाचार्य हरदास ठाकुर जो हर दिन 3,00,000 नाम जप करते थे, महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। तो हरदास ठाकुर क्योंकि यवन परिवार में जन्म हुआ था वो जगन्नाथपुरी मंदिर तो नहीं जा सकते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते थे उनको दर्शन देने के लिए, स्वयं जगन्नाथ आते थे उनको दर्शन देने के लिए और महाप्रसाद भी देते थे। तो देखिए जो महामंत्र जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो स्वयं कृष्ण उनके पास आते हैं उनकी सारी आवश्यकता पूर्ण करने, उनको कृपा करने के लिए। तो महाप्रभु स्वयं आते थे जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके, हरदास ठाकुर से मिलते थे और कुछ कृष्ण कथा करते थे, और उसके बाद महाप्रभु अपने निवास स्थान जाते थे गंभीरा, और दोपहर के समय समुद्र स्नान करते थे, अपना दोपहर का वंदना करके फिर किसी भक्त के यहाँ प्रसाद लेने आते थे दोपहर में, प्रसाद लेने के बाद थोड़ा सा विश्राम करते थे और उसके बाद जाते थे गदाधर पंडित के पास में श्रीमद् भागवतम श्रवण करने। तो लगभग 3-4 बजे के समय हर दिन महाप्रभु जाते थे किनके पास में? गदाधर पंडित, गदाधर पंडित के पास जाके भागवतम श्रवण करते थे। तो ये महाप्रभु का डेली स्केड्यूल था, और उसके बाद शाम को फिर भक्तों के साथ बहुत बड़ा संकीर्तन करते थे, हजारों भक्त एक साथ शाम को संकीर्तन करते थे और प्रचार करते थे। तो गदाधर पंडित के पास जब महाप्रभु जाते थे वो कौन सी लीला सुनते थे? भगवान की रास लीला, भगवान वेणु गीत, गोपी गीत, ये सब भी सुनते थे। लेकिन मुख्यतः चैतन्य भागवत में बताया गया है कि दो लीला महाप्रभु को बहुत प्रिय था। कौन सी दो लीला? एक है प्रह्लाद चरित्र और एक ध्रुव चरित्र। ध्रुव महाराज की कथा और प्रह्लाद महाराज की कथा ये महाप्रभु बार बार सुनते थे। ऐसे लिखा है हजारों बार महाप्रभु, सौ बार सुनते थे, बार बार कहते थे सुनाओ, बार बार कहते थे ध्रुव महाराज की कथा, प्रह्लाद महाराज की कथा सुनाओ। तो महाप्रभु ने हम सब भक्तों को बताया है कि हमारे जीवन में ये दो भक्तों के चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, ध्रुव महाराज और प्रह्लाद महाराज। तो आज हम प्रह्लाद महाराज के बारे में पढ़ रहे कि प्रह्लाद महाराज जब अपने जो सहपाठी थे, जो क्लासमेट्स थे, उनको वो प्रचार करते थे। आप सबको ये कथा पता है कि संडमर्ग जितना भी प्रह्लाद महाराज को कोशिश करते थे कूटनीति, राजनीति और अर्थशास्त्र सब पढ़ाने के लिए, प्रह्लाद महाराज को उसमें रुचि नहीं रहता था, चुपचाप बैठे रहते थे, एक्टिंग करके बस चुपचाप बैठते थे। लेकिन जैसे भी मौका मिलता था, जैसे भी थोड़ा ब्रेक मिलता था या खेलने का टाइम होता था, स्पोर्ट्स टाइम, उस समय अपने दोस्तों को क्या करते थे, वो प्रचार करते थे। आपको पता है प्रह्लाद महाराज क्यों भगवान के इतने प्रिय हैं? वैसे तो सारे भक्त भगवान को प्रिय हैं, लेकिन आप देखेंगे दसम स्कंद में विशेष करके भगवान कहते हैं प्रह्लाद तू मुझे सबसे प्रिय हो, सारे भक्तों में से तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तो बोल सकते हैं भगवान के तो कितने भक्त हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, सब इतने सारे महान महान भक्त हैं, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रह्लाद तुम मुझे सबसे प्रिय हो? क्योंकि भक्त तो भगवान के अनेक हैं, लेकिन दो ऐसे विशेष गुण हैं जिसके वजह से ऐसा आचार्यगण कहते हैं प्रह्लाद भगवान के बहुत प्रिय हैं। ऐसा बृहद भागवतम नृत्य में भी वर्णन आता है कि शिवजी भी कहते हैं कि प्रह्लाद सबसे महान भक्त है। ऐसा क्यों? ऐसे दो कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि प्रह्लाद महाराज ने बहुत कष्ट सहन किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। जितना कष्ट प्रह्लाद ने सहन किया उतना शायद ही किसने किया। ठीक है ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, सब कुछ किया, लेकिन जितना कष्ट प्रह्लाद को मिला उतना कष्ट किसी और भक्त के जीवन में नहीं आया। उनके पिताजी ने क्या नहीं किया, उनके स्वयं के पिताजी, जो माता पिता का कर्तव्य है रक्षा करना, वही पिता प्रह्लाद को हर तरह से मारने का प्रयास किया, कितना टॉर्चर किया, आप सब जानते हैं कथा, सांप के कुएं में डालना, जलाने का प्रयास करना, पहाड़ से फेंक देना, कितना बेइज्जती करना, सिंहासन से फेंक देना, हर तरह से प्रयास किया कि पिता ने उसको मारने के लिए। उनके टीचर ने कितना टॉर्चर किया होगा, संड अमर स्कूल में सोचिए। तो हर तरह से इतना, जो क्या कहेंगे टॉर्चर को, इतना ताड़न, इतना ताड़न या इतना कष्ट जो प्रह्लाद को मिला वो किसी और भक्त को नहीं मिला। लेकिन इतना कष्ट मिलने पर भी प्रह्लाद हर समय भगवान का स्मरण करते थे, हर समय प्रसन्नचित थे, कभी उन्हें कंप्लेन नहीं किया भगवान को, अरे प्रभु मैं आपका इतना महान भक्त हूं, आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में कभी होता है, कोई कष्ट आता है, हम क्या सोचते, अरे मैं इतना भजन कर रहा हूं, इतना भक्ति कर रहा हूं, आपको मेरे को ही कष्ट देना था, और देखो पापी लोग तो मजा कर रहे हैं और आप लोग देखो भक्त को ही कष्ट देते हैं। नहीं, प्रह्लाद महाराज कभी भी ऐसे मूड नहीं था उनका, हर समय वो कृतज्ञ थे भगवान के प्रति और हर समय भगवान का स्मरण करते थे, उनका नाम लेते थे। तो ये जो प्रह्लाद महाराज का भाव था ये बहुत ही एक विशेष अद्वितीय जो उनका एक भाव था ये प्रह्लाद महाराज के, इतने कष्ट सहन करने पर भी कभी उन्हें भगवान को ये नहीं कहा कि मेरा दुख दूर कीजिए, या कभी कंप्लेन नहीं किया मुझे ऐसा क्यों आपने किया, हर परिस्थिति में वो उसको आनंद पूर्वक स्वीकार किए, कृतज्ञ पूर्वक ग्रेटफुल होके और हर समय भगवान का चिंतन करते थे। तो ये पहला कारण है कि बहुत उन्होंने कष्ट सहन किया, तभी तो नरसिंहदेव जब प्रह्लाद को अपने गोद में बैठाए तो चाटने लगे, कह रहे प्रह्लाद भगवान इतने क्रोधित क्यों हुए अंत में, क्योंकि नरसिंहदेव से सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे पर, उनके प्रिय भक्त पे हिरण्यकश्यप ने इतना उनको सताया, तो नरसिंहदेव चाटने लगे प्रहलाद को, इतने प्रसन्न हुए। पहला ये कारण। और दूसरा कारण क्या है पता है उनका? कोई बोल पाएंगे दूसरा कारण क्या है, क्यों भगवान को प्रहलाद इतने प्रिय हैं? ऐसा कौन सा विशेष गुण है प्रहलाद महाराज में? हाँ, उन्होंने अपने पिता के लिए भी प्रार्थना किया भगवान से कि मेरे पिताजी को क्षमा कीजिए, जब भगवान ने बोला वरदान मांगो। और क्या है? एक विशेष लक्षण प्रहलाद महाराज में, क्या करते थे हर समय? प्रचार, प्रचार की भावना। तो ये जो भावना थी प्रहलाद महाराज में, पर दुख दुखी, वो जानते थे कि संसार में जितने जीवात्मा है वो दुखी किस लिए है? भगवान को भूल के। तो ये जो प्रचार की भावना थी प्रहलाद महाराज में, ये बहुत ही विशेष भाव था उनमें। वैसे तो हर एक भक्ति महान होते हैं और सभी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रचार की भावना प्रहलाद महाराज में है वो शायद ही किसी भक्त में है। क्योंकि आपको पता है प्रहलाद महाराज अभी कहां है? हाँ, अभी प्रहलाद महाराज वैसे कहते हैं, मैं एक श्लोक ढूंढ रहा हूं, प्रहलाद महाराज ऐसे कहते हैं दो रूप में है, एक रूप में इस भौतिक जगत में है, सूतल लोक में। आपको सब कहानी पता है ना कि प्रहलाद महाराज के पोते कौन हुए? बलि महाराज। बलि महाराज कहां रह रहे? सूतल लोक, जो जो 14 लोक है ना, पृथ्वी लोक, उसके ऊपर स्वर्ग, भूर्भुवर, स्वर्ग लोक है, नीचे 7 लोक है, आताल पाताल सूतल। तो सूतल लोक एक है नीचे, पृथ्वी के नीचे का लोक है, लेकिन ये भी बड़ा बिल्व स्वर्ग कहते हैं इसको, बहुत ऑपुलेंट है, बहुत ऐश्वर्य वाला है। तो यहां पे रहते हैं प्रहलाद महाराज, और एक रूप में रहते हैं वैकुंठ में। तो जो महान भक्त होते हैं वो अपने आप को दो रूप में भी, एक रूप में भौतिक संसार में रहते हैं, एक रूप में भगवान के धाम रहते हैं। ऐसे हनुमान जी, ऐसा वर्णन है भागवतम में कि वो किम पुरुष लोक में रहते हैं इस संसार में, और राम जी का गुणगान कर रहे हैं, और साथ साथ में जो आध्यात्मिक जगत में जो अयोध्या है साकेत धाम में, वहां भी हनुमान जी हैं। तो उसी प्रकार प्रहलाद महाराज वैकुंठ लोक में भी है भगवान नरसिंहदेव के साथ में, और इस जगत में भी है, किस लिए? प्रचार करने के लिए। ये भाव है, प्रहलाद महाराज चाहते हैं वो सबको भक्त बनाए। जब आगे जब भगवान नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज स्तुति करेंगे तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नैवोद्विजय पर दुरतया वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त सोचे तत विमुख चेत सैन्द्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढान। श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में अक्सर ये श्लोक बोलते थे, कहते नैवोद्विजय पर दुरतय वैतरण्यास, कि देखो मुझे, नरसिंहदेव को कहते थे मुझे कोई ज्यादा इस संसार से तरने की मेरे अंदर ज्यादा कोई चिंता नहीं है। क्यों? तद्वीर्य गायन महामृत मत्तचित, तद्वद वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्त। तो आपके जो नाम है, आपकी लीलाएं हैं, आपके गुण हैं, इस सुंदर आपके नाम गुण लीला में मेरा चित्त पूरी तरह से लगा हुआ है। प्रहलाद महाराज कहते मेरे को अपने लिए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं तो जहां भी रहूंगा आपका ही स्मरण करूंगा। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्याथ दर्शिना। भगवान के भक्त चाहे जहां भी रहे, स्वर्ग में, नरक में, इस लोक में, वह हर समय क्या करते हैं? वहां पे भगवान की सेवा करेंगे। तो कहते हैं मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का दुख है। क्या दुख है? सोचे तत विमुख चेत इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़। तो क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज, किस चीज का उनको दुख है? जब वो संसारी लोगों को देखते हैं, इस संसार में लोग कैसे माया सुख के पीछे भाग रहे हैं और कैसे दुखी हैं, उनके दुख को देख के प्रहलाद महाराज को क्या होता है? दुख होता है, पर दुख दुखी, यह वैष्णव का हृदय है। वैष्णव दूसरे को देख के अंदर से रोता है जब वो देखता है कोई भक्त नहीं है, उसको लगता है मैं कैसे इसको भक्त बनाऊं। ये प्रहलाद महाराज के अंदर भावना थी, पर दुख दुखी। वो कहते हैं नरसिंह देव को, अरे कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो हिमालय में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो रहना चाहता हूं सबके बीच में, शहर में। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं इसीलिए हम इस्कॉन का केंद्र कहां खोलते हैं, बड़े बड़े शहर में। श्री प्रभुपाद जी कहां गए इस्कॉन का केंद्र शुरू करने, न्यूयॉर्क, जो कि पूरा विश्व का कलयुग का राजधानी है। सबसे ज्यादा पाप का अगर हम केंद्र बोलेंगे तो वो न्यूयॉर्क है, वहां पर श्री प्रभुपाद जी के इस्कॉन की स्थापना करने, क्योंकि प्रभुपाद जी में ऐसे ही भाव था प्रहलाद महाराज की तरह, मैं दूसरों का कैसे उद्धार करूं। प्रभुपाद जी तो बड़े खुश थे राधा दामोदर मंदिर में, भजन कुटीर में हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपना 64 माला करते थे और भागवतम अनुवाद करते थे, सर गोस्वामी मंदिर में जाके दर्शन करते थे सप्त देवालय में, तो प्रभुपाद जी तो बहुत प्रसन्न थे राधा दामोदर मंदिर में। क्या आवश्यकता थी उनको 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, पानी के जहाज में बैठ के 2 बार हार्ट अटैक आया, इतना कष्ट सहन किया श्रील प्रभुपाद जी ने। ये प्रभुपाद जी का 125वां जन्म तिथि है इस साल, तो सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी का लीलामृत जरूर पढ़ना चाहिए, उसे बहुत प्रेरणा मिलती है। प्रभुपाद जी ने कितना कष्ट सहन किया अपने जीवन में, किस लिए, क्योंकि उनमें भी प्रहलाद महाराज वाला ही भाव था, पर दुख दुखी। वो चाहते थे वो सबको कृष्ण भक्ति में जोड़े, वो केवल अपना उद्धार नहीं चाहते थे, और ऐसे ही भाव से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रहलाद भगवान को किस लिए इतने प्रिय हैं, ये 2 गुण के वजह से। पहला, उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया भगवान के लिए, और दूसरा उनके अंदर जो प्रचार भावना थी कि सबको भगवान का भक्त बनाना है, ये 2 विशेष गुण के कारण प्रहलाद भगवान को अति प्रिय है। भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई प्रिय भक्त नहीं है, सारे भक्तों में से तुम सबसे श्रेष्ठ हो। वही बात जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जो मेरा ज्ञान दूसरों को बांटता है वो मेरा सबसे प्रिय होता है। तो यही प्रूफ है, देखिए प्रैक्टिकल है। नरसिंह देव कह रहे हैं प्रहलाद को, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, क्योंकि प्रहलाद महाराज में प्रचार की भावना थी। जो हम आज के श्लोक में देख रहे हैं, वो अपने अपने मित्रों को क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये 6वां अध्याय 7वां अध्याय क्या है, प्रहलाद महाराज कैसे प्रचार कर रहे हैं अपने मित्रों को। 6वें अध्याय में हम देखते हैं प्रहलाद ने अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को शिक्षा दी, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मन भागवतम इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कहते हैं बचपन से ही, ऐसा मत सोचो कि अभी छोटे छोटे हो, अभी तो खेलने कूदने की उम्र नहीं, 5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, कई जन्मों के बाद हमें मिला है और बहुत क्षणभंगु है, कभी भी नष्ट हो सकता है, इसलिए जितना भी समय हमें मिला है उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रहलाद महाराज एनालिसिस करते हैं, देखिए बचपन के 20 साल तो ऐसे खेलने कूदने में चले जाते हैं, बुढ़ापे में लास्ट के 10-20 साल आदमी कुछ कर नहीं पड़ता, बेड में सोया रहता है, और बीच का जो समय है उसमें भी आधा समय आदमी सोने में नष्ट कर देता है, तो भक्ति करने के लिए बहुत ही कम समय बचता है हमारे जीवन में, तो कम से कम वो समय हमें सीरियसली भक्ति करना चाहिए। तो ऐसे प्रचार करते हैं प्रहलाद महाराज। वास्तव में ये कभी हमें भी इसको बारे में एनालाइज करना चाहिए, हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, टाइम कितना मूल्यवान है, और विशेष करके जब से व्हाट्सएप और स्मार्टफोन आए कितना हम समय वेस्ट कर देते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सेवा थोड़ा बहुत करते होंगे, बाकी तो टाइम पास करते हैं बस मोबाइल को लेके, कितना हमारा समय नष्ट होता है, मेरे जीवन में भी। लेकिन जब हम शिक्षा पढ़ते हैं प्रहलाद महाराज का, तो जीवन में एक सीरियसनेस आना चाहिए कि समय कितना दुर्लभ है, हर एक क्षण मनुष्य जीवन का कितना दुर्लभ है, तो हर एक क्षण हमें कोशिश करना चाहिए कैसे भगवान का नाम लें, कैसे सेवा करें, समय का दुरुपयोग ना करें। हम देखते हैं जैसे इस्कॉन में भी जो महान भक्त हैं उनके जीवन में एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, कभी उस समय को नष्ट नहीं करते। तो प्रहलाद महाराज यही शिक्षा दे रहे अपने दोस्तों को कि समय का सदुपयोग करो, भक्ति करो, और इस तरह से 6वें अध्याय में बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को कि कृष्ण ही हमारे परम मित्र हैं, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। तो उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का भक्ति करना चाहिए। संसार में सुख दुख तो आता रहेगा, हम चाहे जितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, हमारे भाग्य में जितना सुख और दुख लिखा है उतना अपने आप आ जाएगी। प्रैक्टिकल आप देखिए, कोई ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा नहीं प्राप्त होगा, हमारे भाग्य में जितना भौतिक सुख या दुख लिखा है उतना मिलके रहेगा। लेकिन प्रयास किसके लिए करना चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते एक ही चीज के लिए प्रयास करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो क्या है? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। श्रवण कीर्तन जितना हम अधिक से अधिक करें, प्रचार करें, इसके लिए प्रयास हमें करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं प्रहलाद महाराज छठे अध्याय में। तो उनके दोस्त लोग पूछते हैं इस सातवें अध्याय में कि प्रहलाद तुमने कहां से सब सीखा, कि हमारे टीचर तो ऐसा सिखाते नहीं है, तुम भी हमारे क्लासमेट हो, सहपाठी हो, कहां से सीखे तुम? वे उस समय स्मार्टफोन भी नहीं था कि प्रहलाद महाराज ने कोई ऑनलाइन भक्ति शास्त्री किया, कि ऑनलाइन भक्ति शास्त्री में रजिस्टर किया और सारा सीखा। बोले कहां से सीखे तुम प्रहलाद, तुम तो हमारे साथ ही पढ़ रहे हो, ये टीचर लोग तो उल्टा शिक्षा देते हैं, कैसे दूसरों को सताना, कैसे दूसरों को धोखा देना, कैसे ज्यादा पैसा कमाना, कूटनीति, राजनीति, ये सब सिखाते हैं, तुमने इतना अच्छा ज्ञान कहां से सीखा भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में? तब प्रहलाद इस सातवें अध्याय में कहते हैं कि मैं जब अपने मां के गर्भ में था तो तब मैंने ये सब सीखा। तो यहां से शुरू होता है, कहते हैं जब आपको सब ये कथा पता है कि कैसे हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने चले गए तो उस समय देवता लोग आए और सारे हिरण्यकशिपु के राज्य को उथल पुथल कर दिए और तोड़ फोड़ मचा दिए, और कयादु को लेके जा रहे थे। किस लिए? वो चाहते थे कि जैसे भी वो बच्चे को जन्म देगी वैसे उसको मार देंगे, क्योंकि जानते थे हिरण्यकशिपु का बेटा है उनके पत्नी के गर्भ में। लेकिन तब कौन आए? नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने सबको मना किया, बोले तुम जानते नहीं उनके गर्भ में कौन बालक है, इसको तुम चाह के भी नहीं मार पाओगे, ये तो महाभागवत है, भगवान विष्णु के बहुत प्रिय भक्त है। तो जैसे भी देवताओं ने सुना तुरंत उन्हें प्रणाम किया और वहीं प्रदक्षिणा की, परिक्रमा किया। किसका? कयादु का। तो कयादु का देवताओं ने तुरंत परिक्रमा किया और प्रणाम किया कि उनके घर में भगवान के महान भक्त हैं, और वहां से चले गए। लेकिन नारद मुनि ने फिर कयादु को अपने आश्रम में ले आए और उनको कृष्ण कथा, भागवत कथा सुनाए। तो प्रभुपाद जी एक चीज समझाते हैं कि वैसे तो कोई साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई स्त्री को अपने आश्रम में लाके, ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन नारद मुनि के स्तर में जो जो मुक्त आत्माएं होते हैं, महाभागवत होते हैं, केवल वही ऐसा कर सकते, बाकी कोई करेगा तो उनका पतन हो जाएगा। जैसे हरदास ठाकुर ने जब वैश्य आए तो उनको हरिनाम सुनाया तो वैश्य का उद्धार हो गया, तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं वो कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कयादु को अपने आश्रम में रखा और उनको अच्छा कितने दिन तक कृष्ण कथा सुनाया? जितने वर्ष तक हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, कितने वर्ष कर रहे थे? देवताओं के 100 वर्ष, यानी हमारे कितने वर्षों के? 36,000 साल। तो ये जो भागवतम कोर्स चला था प्रहलाद मां जो अटेंड किया था मां के घर में, वो एक या दो दिन नहीं चला था, कितने वर्ष चला था? 36,000 वर्ष चला था ये। तो कितना श्रवण किया उन्होंने नारद मुनि से, तभी तो इतने महान भक्त बने। तो देवताओं के 100 वर्ष तक कयादु ने श्रवण किया कृष्ण कथा, किन से? नारद मुनि से। और उसके बाद फिर जब हिरण्यकशिपु वापस आ गया तपस्या करके और पूरे संसार का राजा बन गया, तब कयादु अपने पति के पास वापस चली गई। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे सब कुछ याद है लेकिन मेरे मां को याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मां सुन तो रही थी लेकिन उसका ध्यान कहां था? उनके पति के बारे में, कब मैं घर वापस जाऊंगी, तो मां का ध्यान ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने ध्यान से सुना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए, स्पेशली जब बच्चे मां के गर्भ में रहते हैं तो मां को बहुत ज्यादा कृष्ण कथा सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चा सुनता है, मां नहीं भी सुने बच्चा सुनता है। तो प्रहलाद महाराज ने सारा कृष्ण कथा सुना और अब वो कह रहे अपने मित्रों को, देखो मैं जब मां के घर में था तो मैं सब आध्यात्मिक शिक्षा अपने गुरु श्री नारद मुनि से मैंने सुना और यही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो आज के श्लोक में बड़ा सुंदर कहते हैं आत्मा का ज्ञान, क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के फलों और फूलों में 6 विकार होते हैं, 6 विकार जानते हैं ना आप सब, पहले जन्म लेना, फिर कुछ समय तक रहना, ग्रोथ बढ़ना, फिर क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना या और नए बाय प्रोडक्ट्स बनाना, फिर क्षय होना, धीरे धीरे क्षीण हो जाना और लास्ट में अंत हो जाना। आप देखेंगे फल ऐसा ही होता है ना, पेड़ में पहले फल थोड़ा सा आता है, फिर धीरे धीरे फल बड़ा होता है, कुछ समय के लिए रहता है, पक जाता है, फिर धीरे धीरे सड़ने लगता है और फिर पेड़ से नीचे गिर जाता है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। हमारा शरीर ऐसा ही है, पहले जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ बच्चे पैदा करता है और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, शरीर क्षीण होने लगता है और फिर अंत हो जाता है। ये सड़ विकार कहते हैं इसको। तो ये सड़ विकार शरीर में आता है लेकिन आत्मा में नहीं आता। तो यही ज्ञान प्रह्लाद महाराज कह रहे कि देखो, शरीर में सड़ विकार आता है लेकिन आत्मा इससे परे है, आत्मा शाश्वत है। प्रभुपाद जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय से कहते हैं, ना जायते म्रियते वे कदाचिन, कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, उसका जन्म नहीं होता, अजो नित्य है, कभी जन्म नहीं होता, नित्य है, शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। तो आध्यात्मिक ज्ञान श्री प्रभुपाद जी समझा रहे कि मूर्ख वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि केमिकल से जीवन आया है। कई ऐसे लोग आज भी सोचते हैं, अरे कोई आत्मा आत्मा कुछ नहीं है, वो केमिकल्स मिलने से ही, रासायनिक पदार्थ मिलते हैं और जीवन आ जाते हैं। प्रभुपाद कैसे महामूर्ख है, प्रभुपाद कहते अगर ऐसा होता तो हर बार गर्भ में शिशु क्यों नहीं आता है? नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक गर्भ धारण नहीं होता। आप देखिए, छोटा बच्चा अगर आत्मा चली जाए, मर जाए, तो वो शरीर बढ़ता है क्या? जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक शरीर का साइज बढ़ता रहता है। जैसे भी आत्मा निकल जाता है शरीर से, शरीर वहीं का वहीं रह जाता है, बढ़ता नहीं। तो शरीर के अंदर जब तक आत्मा रहता है तब तक शरीर बढ़ता है, तब तक शरीर का अस्तित्व रहता है। जब तक आत्मा शरीर से निकला, शरीर वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए आत्मा का जो महत्व है उसको हमें समझना चाहिए। हम शरीर नहीं है, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी इसलिए आप देखेंगे बार बार इसको दोहराते हैं, और देखेंगे भागवतम में भी ये बार बार ये ज्ञान दिया जाता है। हमें लगता है ये तो बहुत बेसिक नॉलेज है, ये तो शुरू शुरू में हम लोग सुने थे, अभी तो हमें केवल कृष्ण लीला सुनना चाहिए। नहीं, ये ज्ञान जब तक हमारे अंदर बार अंदर से ठीक तरह से बार बार श्रवण नहीं करेंगे, हम अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते। हम क्या बन जाएंगे? सहज्या बन जाएंगे। अब तेरे सहज्या भक्ति में दो तरह का खतरा है, एक मायावाद का और एक सहज्य का। मायावाद यानी जो सोचते हैं कि भगवान का रूप माया है, भगवान निराकार है, तो कई लोग मायावादी होते हैं और कई लोग क्या होते हैं, सहज्या। सहज्या यानी वो भक्त होते हैं लेकिन वो नियम वगैरह ठीक से पालन नहीं करते, ठीक से उनके आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, एकादशी व्रत भी पालन नहीं करेंगे, कुछ नियम का पालन नहीं करेंगे, बस बोलेंगे और बस हम तो भक्त हैं और आंख से आंसू टपकाएंगे। तो ये इसको कहते हैं सहज। तो ये भी बहुत बड़ा डेंजर है भक्तों के लिए, विशेष करके वृंदावन में जब लोग रहते हैं, ऐसे कई सारे सहज लोग हैं जो बोला रहे क्या गीता वगैरह पढ़ने में रखा है, बस भगवान के रासलीला का चिंतन करो। ये है सहज प्रकृति। तो हमें दोनों से सावधान रहना चाहिए। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य बार बार जब पढ़ेंगे तो जो बेसिक नॉलेज है हमारा भक्ति का वो स्ट्रांग होगा, और फिर क्या होगा, इससे वैराग्य आएगा, तब हम असली भक्ति कर पाएंगे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। महाप्रभु जो सिखाया है, जो भक्ति है, ये वैराग्य का पथ है। तो शरीर, प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए शरीर का बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शरीर एक ना एक दिन तो अंत होना ही। आप देखेंगे बाहर की दुनिया में लोग इतने ज्यादा बॉडी के लिए कॉन्शियस होते हैं, मेकअप करना या बुढ़ापा आ रहा है तो उसके लिए लोग कई सारे प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। लेकिन भक्तों को ये विश्वास होना चाहिए जब बार बार हम पढ़ते हैं कि ठीक है, शरीर का जितना आवश्यक है उतना देखभाल करना चाहिए शरीर का, बहुत ज्यादा हर समय शरीर के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। तो हमें आत्मा के बारे में चिंतित होना चाहिए, कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े उसके बारे में हमारा हर समय ध्यान होना चाहिए। यही प्रह्लाद महाराज अपने अपने मित्रों को शिक्षा दे रहे हैं, जो उन्होंने अपने माँ के गर्भ में नारद मुनि से वो सुने थे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई कमेंट्स है? अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो ये प्रचार का भाव जो प्रहलाद महाराज में है, इससे हमें जरूर प्रेरणा लेना चाहिए। और महाप्रभु की लीला में एक वासुदेव दत्त थे, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु के तुम साक्षात प्रहलाद हो, उनके अंदर भी ऐसा प्रचार भावना था प्रहलाद महाराज के। आपको पता उन्होंने क्या प्रार्थना किया? उन्होंने ये प्रार्थना किया कि मैं चाहता हूं कि विश्व में जितने प्राणी हैं, जितने जीव हैं, सबका पाप मुझे मिल जाए, मैं उनके लिए कष्ट सहन करूं और सबको आपके धाम चले जाए। देखिए कितना महान प्रार्थना, कोई ऐसा संसार में नहीं कर सकता ऐसा प्रार्थना कि सबके पाप मुझे मिल जाए और मैं नरक में चला जाऊं लेकिन बाकी सबका उद्धार हो जाए। तो ये इससे थोड़ा सा हम सोच सकते हैं वैष्णव का हृदय कैसे होता है। तो इसका थोड़ा सा 0.0001% भी अगर हमारे अंदर वो गुण आ जाए पर दुख दुखी वाला, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। और श्री प्रभुपाद जी में भी हम ऐसा गुण देख सकते हैं, कैसे उनमें प्रचार भावना था। और प्रभुपाद जी कई शिष्यों में भी हम ये गुण देखते हैं, कैसे वो दिन रात 24 घंटे प्रचार की भावना में रहते हैं, अस्वस्थ होने पर भी प्रचार करते हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे संग में हैं। हरे कृष्ण।